તારીખ 16/9/1991 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા સળંગ નંબર 25.
उसको तो सुतर्क कहते हैं, तर्क करके न्याय संगत काम करें तो उसको का तर्क स्वीकार किया, लेकिन न्याय को ग्रहण करे न्याय को नहीं ग्रहण करे ऐसा तर्क को तर्क कहते हैं। और अपने जरूरत से ज्यादा तर्क करे, अपना प्रयोजन से अधिक तर्क करे तो अपने लिए नुकसान का कारण। एक परमाणु में तो ऐसी बात दिया है कि जिसकी प्रकृति स्वभाव ऐसा हो कि तर्क बात बात में बस तर्क ही उठाता रहे, तो उसको वहां क्या लिए लिखा है मालूम है? ये मानसिक रोग है। क्या लिखा? मेंटल डिजीज, मानसिक रोग होता है। कि परमाणु चिंता में है ना, उसमें रोग आता है। ऐसे तर्क वाले को मानसिक रोग हो
गया, पूछे नहीं, कोई पूछे नहीं, कोई पूछे नहीं,
छो
नहीं जा रहा।
अपना प्रयोजन की बात पूछो, न्याय संकल्प की बात पूछो, कोई सवाल नहीं। ये इसकी मर्यादा है, ये मर्यादा का उल्लंघन करना मुख्य नुकसान का कारण। जैसे हम खाते हैं तो कोई कहेंगे कि कितना खाना चाहिए, खाने का स्टैंडर्ड कौन सा, धोरण क्या है, कोई ऐसा कहेगा कि जितनी भूख लगे उतना खाओ, ठीक है ना? जितना हजम होगा उतना खाओ, भूख लगे उतना मत खाओ, ठीक है? बात चली तो कई प्रकार की बात चलती
है।
अगर हम हजम करें इससे ज्यादा खा ले रहे, क्यों हमको भूख लगी? दो कारण होता है, एक तो भूख ज्यादा हो खा ले रहे, या तो जीभ को अच्छा लगी जाए तो खा ले रहे। पेट तो ना भूलता है भटिया, लेकिन जीभ ना नहीं पाते, जीभ तो बोलते हैं कभी होती और स्वाद देना है। तो ये जो खुराक है शरीर में ताकत आती है, शरीर को पुष्टि मिलती है, वही खुराक शरीर में कमजोरी लाएगा। अगर हजम होने से भी ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? कि जो खुराक से शक्ति आती है वही खुराक कमजोरी का कारण होता है, या तो प्रमाद आएगा, या तो वॉमिट होगा, या तो लैट्रिन हो जाएगा, या तो बुखार आ जाएगा, या तो गैस हो जाएगा, तो सिर दर्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमजोरी, कोई भी रोग होगा तो कमजोरी है, होने से क्या होता है? कमजोरी। तो हर बात में यथार्थता, योग्य खाना भी योग्य रूप से, नहीं खाना भी योग्य रूप से, ऐसा ऐसे यहाँ भी ज्ञान करना है। ये अपने को लागू होता है, वो अपनी प्रवृत्ति को लागू होता है। जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो लोग सिद्धांत पढ़ते हैं, उसको कितना भी शास्त्र पढ़ ले, जरूरत से भी ज्यादा जान ले, वाद विवाद भी कर ले, जरूरत मौके नहीं हो, और तर्कना भी कर ले, भी जरूरी, और धारणा रूप ज्ञान को जो बात समझ में आई और धारणा स्मृति में मिली, उसको बार बार उसको स्मरण किया करें, रटन किया करें। पहले मैंने बार बार उसका रटन करें, किंतु इसका कोई इतना मूल्य नहीं है, ये सब बातों का इतना मूल्य नहीं है। यदि ज्ञान स्वरूप आत्मा हुए शास्त्र पढ़ करके क्या करना है? मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसी अपनी मौजूदगी को वेदन से ग्रहण करे। कैसे? वेदन से ग्रहण करे। आत्मज्ञान के विषय में ऐसा है कि गुण से, लक्षण से, गुण से और
वेदन मैंने अनुभव किसका अनुभव है कौन मैंने स्वभाव का ऐसे लक्षण से स्वभाव से और वेदन से अनुभव से किसने आत्मा को जाना उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं उसी को आत्मज्ञानी
क्रिया गुण तो एक ही होगा
जी
स्वभाव क्रिया जो गुण जो है स्वभाव तो क्रिया में आता है
स्वभाव है वो त्रिकाली है और क्रिया क्षणिक है
बराबर आया तो उसमें नहीं हो
हाँ उसमें आता है फिर भी जो क्रिया है और स्वभाव है वो स्वभाव है तब तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम क्रिया रूप ही स्वभाव को एकांत से स्वीकार करें तो क्रिया का प्रणाम क्रिया क्षणिक होने से क्रिया का नाश होता है स्वभाव क्रिया भी होता है स्वभाव में उदय अस्त नहीं है तो क्रिया का उदय अस्त होता है इसलिए क्रिया में होते हुए भी वो क्रिया रूप नहीं है स्वभाव ये बात ये तो छोटा चलिए कि ज्ञान क्रिया में ज्ञान स्वभाव क्या है स्वभाव को पहचानेंगे तो पर्याय से नजर नहीं आएगा तो ज्ञान की क्रिया में पर्याय को सिर्फ देखेंगे तो स्वभाव नजर नहीं आएगा एक जगह है बिल्कुल अपना दृष्टिकोण स्वभाव को देखने का है तो कोई आपत्ति नहीं और पर्याय के देखने का दृष्टिकोण है तो पर्याय दृष्टिकोण देखिए हमारी नहीं तो मिथ्या तो जाने वाला नहीं है ये बात क्या कहते हैं किंतु यदि ज्ञान स्वरूप आत्मा के अस्तित्व को न पकड़े निकाल ज्ञान स्वभाव अस्तित्व में नहीं अस्तित्व को निकाल और वेदन से मौजूदगी को नहीं ग्रहण करे और तद्रूप मैंने तन्मय परिणमित न हो जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप रूप तन्मय परिणमित नहीं हो तो क्या ताल प्रत्यय तो फिर निवर्त में रहता है नील में एकाग्र रहता है नील में तन्मय रहता है नील को जानते वक्त भिन्न नहीं रह सकता है और जो जो बाहर का नहीं है अपने सिवा अन्य नहीं है फर्क नहीं है उसमें तल्लीन हो जाता है जानता नहीं है तन्मय होकर जान देता और उस तन्मयता में क्या होता है कि मानव ज्ञान बाहर से आता हो ऐसा भाव होता रहता है ऐसा अनुभव करता रहता है जैसे हम दर्शवा देते हैं बाहर में बहुत करता है बच्चे को या तो एक पर कोई ऐसे कोई बच्चा का बाजार में वगैरह तो उनको यहाँ डिस्टर्ब होता है ना आवाज होता है तो डिस्टर्ब होता है तो ये आवाज कहाँ इधर आती है हमारे ज्ञान में क्या होता है
तुरंत ज्ञान सुना जाता है
हाँ ज्ञान में यहाँ से कुछ नहीं होता हमारे ज्ञान में बाहर से कुछ आता
नहीं
आवाज हमारे ज्ञान में बाहर से नहीं आता आवाज का ज्ञान कहाँ से हुआ आवाज का ज्ञान कहाँ से हुआ यहाँ से हुआ कि यहाँ से हुआ
यहाँ से हुआ
यहाँ से हुआ ठीक है हमारा ध्यान ज्ञान इधर नहीं है हमारा लक्ष्य इधर नहीं है उधर रहता है तो हमको ऐसा लगता है कि इसका डिस्टर्बेंस होता है अगर हमारा ध्यान हमारे ज्ञान पर रहता है तो सुनाई ही नहीं देता क्या होता है ज्ञान में होता है हमको नहीं
पता जो जो सुनने से सुनने में आ रहा आता है उसके
यही बात है आ रहा आता है काला नहीं आता ये सवाल है
ना, आवाज है ना, आवाज है, सुनाई नहीं देता है,
भले सुनाई नहीं देगा लेकिन ध्यान रखे तो
ध्यान रखे
वहाँ ध्यान जाता है तो सुनाई नहीं देता, इधर ध्यान रहता है तो कोई तकलीफ लेकिन हमको ध्यान हमारे ज्ञान पर रखना है, किसी के आवाज पर सुनते वक्त भी
सुनने को आए तो उसमें आवाज ज्ञान लक्ष्य रहेगा उसके अंदर,
ज्ञान ज्ञान भंडार में से आता है या ज्ञान उपदेश में से आता है,
ज्ञान भंडार में से आता है,
भगवान के समोसरण में बैठ लेके भगवान की दिव्य सिंफनी से सुनकर परमात्मा की जब चालू है चुप रही है उस वक्त पूरे विषय में उसको आशंका होती है, सूक्ष्म विषय में
दुनिया
को बहुत ज्ञान होता है फिर भी कोई विषय में सूक्ष्म आशंका होती है तो उसको प्रश्न होता है, आचार्य के पास जाए या जतिंदर के पास जाए प्रश्न पूछे और उत्तर भी दे उनको अपनी शंका का समाधान मानव के समाधान हो गए। अब ये समाधान उत्तर से हुआ या अपने ज्ञान स्वभाव में से हुआ ज्ञान तो ज्ञान अंदर में से निकलता है समाधान का ज्ञान भी ज्ञान होंगे ज्ञान का भंडार जो आत्मा है उसमें से ज्ञान निकला
है आशंका क्यों आती है
उत्तर में से ज्ञान
आशंका क्यों आती है क्यों आता है
ये भी एक अवस्था है जिसमें आशंका होती है लेकिन मुनिराज को यह पता है ये उत्तर में से समाधान नहीं आया है मेरे ज्ञान
के ज्ञान में से
इसका अनुभव है ऐसा अनुभव होता है उत्तर से नहीं पड़ जाता है इस तरह ज्ञाना में आ सकता है इस तरह ज्ञाना में आ सकता है तो लक्ष्य तो हमको हमारे ज्ञान स्वरूप के ज्ञान स्वभावी आत्मा पर तो सर्वांग समाधान का सर्वांग समाधान स्वरूप ही अपना आत्मा है ऐसा है आत्मा सर्वांग समाधान
आचार्य क्यों गए थे आचार्य यहाँ से वहां क्यों गए थे
फिर भी उसको वो बात पक्की है
जिसे ज्ञान में आता है
भगवान का दर्शन करने का भाव आया
आशंका का समाधान था आशंका का समाधान था करने के लिए गए ना
मानो के गए थे फिर भी हमको ऐसा किया क्या अनुभव किया ज्ञान में से ज्ञान अंदाज में से ज्ञान आता है शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता है और गुरु में से भी ज्ञान नहीं आता
ये भी निमित्त का तो ज्ञान है मेरे ज्ञान निमित्त का ज्ञान है कि
निमित्त का ज्ञान भी ज्ञान में से आता है ज्ञान का से आता है क्या सवाल है ज्ञान क्या से उत्पन्न हुआ जिन्हें ज्ञान हुआ क्या ज्ञान तो ज्ञान अभी आप देखिए कि उत्तर उत्तर की बात श्री गुरु उपदेश देते हैं और शिष्य सुनता है अपन सुनते हैं गुरुदेव का उपदेश हम सुनते हैं उसको सम्मत करते हैं तभी तो माना है अगर सम्मत नहीं किया तो उपदेश को स्वीकार नहीं किया नहीं माना तो सम्मत हम कैसे करते हैं अंदर में अपनी प्रक्रिया को थोड़ा तलाश करके देखिए क्या होता है कि सुनने के बाद उसका जजमेंट निकलता है कि क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है, ये किसके साथ निकलता है? अपने आत्मा के साथ प्रक्रिया होती है। इसके साथ लगती है प्रक्रिया, अपनी आत्मा के साथ एक प्रक्रिया अंदर में भीतर में चलती है। श्री गुरु ने तो ऐसा कहा लेकिन ये बात ठीक है, समझ करने योग्य है या ठीक नहीं है, इसका कौन निर्णय करेगा? तो अंदर में थोड़ा सा प्रोसेस चलता है इसके लिए ज्ञान का, और फिर ज्ञान ज्ञान को समझ करता है कि ठीक है ये बात क्या ठीक नहीं है। शरीर में से जजमेंट निकलता है तो अंदर में प्रोसेस चलता है, क्योंकि वाणी तो पुद्गल है, वो तो जानती भी नहीं कुछ, और श्री गुरु के जो परिणाम है वो उनके आत्मा में होता है, न वाणी में होता है न सुनने वाले के आत्मा में होता है। इसलिए ज्ञान की क्रिया तो व्यास में होती है और इससे ही ज्ञान होता है। अंदर जो ज्ञान करने की शक्ति भरी है इस शक्ति में से व्यक्ति होती है। ये अनादि अनंत बहुत सुंदर पत्र है पढ़ना, उस प्रोडक्ट में एकाग्र तन्मयता करने का और अनुभव क्या होगा इसमें कि जैसे ज्ञान बाहर आता है, श्री गुरु ने उत्तर दिया तो ज्ञान यहाँ से आया, वो हवा जाए तो ज्ञान जैसे वहां पहुंच गया, या हवा ज्ञान में पहुंच गई तो मैं से एक गलत अनुभव हो जाएगा, ऐसा वेदता है मैंने, ऐसा अनुभव करता रहता है, सब पढ़ गया, जितने भी शास्त्र आए उनको सब पढ़ गया, अनेक युक्ति न्याय जाने, शास्त्र के सभी न्याय जाने, युक्ति भी जाने, दृष्टांत भी जाने, न्याय को सिद्ध करने के लिए अनेक विचार किए, इतना परिश्रम किया इसके लिए बहुत विचार किए, परंतु जानने वाले को सब शास्त्र पढ़ते हुए भी अपने स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को गुण से, लक्षण से और वेदन से नहीं जाना, ऐसे तो जाना प्रकार भाव से आत्मा कैसा है, द्रव से चैतन्य द्रव है, स्वभाव से ज्ञान स्वभावी आत्मा है, काल से क्षण क्षण भक्ति अवस्था रूप है, और क्षेत्र से असंख्य प्रदेश आत्मा है, जाना के नहीं जाना, लक्षण से और स्वभाव से अनुभव करे तब जाना, अनुभव नहीं करे तब जाना, परंतु जानने वाले को नहीं जाना, ज्ञान की असली भूमि दृष्टि गोचर नहीं हुई, असली भूमि ऐसा लिया है, भूमि से चलिया है, क्यों कि जब अनुभव होता है तो पूरा क्षेत्र में होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान है ना, इंद्रिय ज्ञान है उसमें क्या है कि इंद्रिय द्वार से उपयोग चलता है, जैसे सुनते हैं तो कान से सुनाई देता है, उपयोग यहाँ रहता है ध्यान करने के लिए, और सुनने का खास सूक्ष्म भी वहां रहता है शरीर में और जगह दूसरे प्रदेश में, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान का परिणाम ऐसा होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसा नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान में पूरा जितना आत्म क्षेत्र है उसमें सब जगह से नाम और नाम का पूरा जो देहाकार चैतन्य पिंड है सब प्रदेश में, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान वेदन आता है और आनंद का अनुभव भी प्रदेश प्रदेश ऐसे असली ज्ञान की असली जो भूमि है आत्मा की दृष्टि गोचर नहीं हुई, वो दृष्टि में नहीं आई, तो वह सब जानने का फल क्या, तो जितना भी शास्त्र पढ़ लिया उसका फल क्या, तो कुछ नहीं, कि शास्त्र का आत्महित के लिए कोई फल आया नहीं, और पर्याय दृष्टि है तो पर्याय में पहले शास्त्र ज्ञान नहीं था, और शास्त्रों पढ़ने के बाद शास्त्रों के सभी अनेक विषयों का ज्ञान हुआ तो पर्याय में विशेषता होगी ना, इसका अहंभाव भी बिना रहेगा, क्योंकि अहंपणा पर्याय में, इसलिए पर्याय बुद्धि में अहंपणा पर्याय में है, इसलिए पर्याय में अहंपणा आने से अहंकार भी बिना रहेगा, क्या फल हुआ कि फिर जानने का इतना सब जानने का फल क्या, कि ज्ञान फल हो गया, वो उसका ज्ञान फल आ जाएगा, हम का ऐसा बन जाता है, इसलिए परमात्मों में पहले से ही बात की सावधानी रखी गई है कि तू पहले स्वरूप को जो जे स्वरूप समझ गया बिना पानी
प्रथम पहली कड़ी में ये बात क्यों लिया, 142 में पहली बात ये क्यों ली थी? सबसे पहले ये बात रखनी का क्या देखने में क्या प्रयोग है, बहुत गहराई है कि वो उतने विचक्षण थे, इतने वाले महापुरुष इतने विचक्षण थे कि पहले क्या लिखना पीछे क्या लिखना उनका बहुत दूरदृष्टि ज्ञान काम करता है। नाम की बात नहीं, सबसे पहले पिताली स्रोत को, सबसे पहले मूल स्रोत का असली स्रोत का ज्ञान करो, फिर पर्याय का सही ज्ञान, पर्याय की तो अहंकार को कैसे रोकोगे, कोई रोकने का उपाय नहीं, ऐसी बात। तो शुरू से पहली बात है पर्याय बुद्धि छोड़ने के लिए पहले स्वरूप का ज्ञान करो, बाद में सब ज्ञान करो, पहला स्वरूप ज्ञान करो। लेकिन शास्त्राभ्यास आदि का प्रयोजन तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना है, शास्त्र का तो यही प्रयोजन। कृपालु देव का 600 नंबर का एक पत्र है, 600 उसमें ऐसा लिखा है, ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी की वाणी में अंतर होता है, भेद होता है, तफावत होता है। क्या तफावत होता है, दूसरा से बात लिखी है, एक बात बहुत काम की, उसमें आशय भेद रहता है। क्या लिखा, आशय भेद मैंने क्या, कि उनके वाणी में प्रयोजन जो है उसकी सिद्धि होती रहती है, कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान कैसे होती है, यही आशय है इनकी वाणी, वो हर जगह नजर आएगा ज्ञानी की वाणी। अज्ञानी खुद अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानता है तो उसकी वाणी में वो बात आएगी, फिर भी इतना आशय नहीं आएगा उसका, आशय मैंने इरादा, इरादा कहते हैं ना, जैसे कोई आदमी विरोधी होकर के भी प्रशंसा करता है, हम क्या जानते हैं, अंजान आदमी तो कहता हूँ आपने बहुत प्रशंसा किया, इनका प्रशंसा करने का आशय है, और कोई अपना मित्र है जितेंद्र है तो अपने को भूल दिखाकर फटका भी देता है, क्या फुलाना देता है, कठोर वचन भी कहता है, तो अपने दूर लगता है क्या, अपने को अच्छा लगेगा, आपने हमारा को ऐसा नहीं कहा होगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता, आपने ये बात करके हमको बचा लिया, क्या आशय भेद है, अच्छा बोले इसलिए अच्छा है, बुरा बोले इसलिए बुरा है, ऐसा हम कभी नहीं देखते हैं, बोलने वाले का आशय को पकड़ते हैं तो हमारी गलती नहीं है, अगर हम आशय को नहीं समझ सकते तो हमारी गलती हुए बिना रहेगी, यही आशय के ज्ञानी की वाणी का हमेशा हमेशा रहता है, कि वो ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा को आश्रय करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अन्वय होने के लिए, अनुभव करने के लिए, ऐसा से ज्ञान में आता। तो सारा जो रचनामृत है इसका सारांश ये है कि हमें शास्त्राभ्यास करने का जो भी चलता है हमेशा, क्या चलता है हमेशा हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। तो शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को यहाँ पर खास बात करनी है, सिर्फ स्वाध्याय करने से बात करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान हुए, जानने वाले को जानने का पुरुषार्थ हुए, प्रयत्न हुए, तभी ये शास्त्र अभ्यास है, इसको भी कहा जाएगा। आपको ज्ञान नहीं हुए तो शास्त्र अभ्यास को ज्ञान का निमित्त कहने में नहीं आएगा, अभिमान का निमित्त कहने में आएगा, तो अभिमान तो ये मिला रहेगा नहीं। ज्ञान स्वरूप आत्मा के अस्तित्व को पकड़ना, अस्तित्व को पकड़ना, मौजूदगी जिसमें पकड़े में अनुभव में आ गए, मौजूदगी का अनुभव हो गए, मौजूदगी का विचार नहीं हो गए, मैं हूं मेरा अस्तित्व है ये एक विचार है, और अस्तित्व का अनुभव हो गए ये वेदन से होता, बिना वेदन होता वेदन लक्षण से लक्षण पूर्वक ही वेदन उत्पन्न होता है, बिना लक्षण पूर्वक वेदन उत्पन्न होता है, और उसमें स्वभाव का मैंने अस्तित्व का मैंने स्वभाव का ग्रहण होता है, तभी आपको पाप जो है आत्मज्ञान है वरना आत्मज्ञान नहीं है, सब बातें नहीं पाते हैं विकल्प ही। जो ज्ञान है उसमें निर्णय करने की क्षमता आती है, योग्यता आती है या निर्मलता आती है, उतनी निर्मलता उसमें आती है, ये विशेषता
सबसे आसान तरीका कौन कौन सा
कौन सी बातें हैं इसमें दर्शन हमें करने के लिए, लेकिन सबसे आसान कौन सी बात है?
सतगुरु से चरण में रहना,
सबसे अच्छी से अच्छी सुगम में सुगम गलती में हुए जो मुमुक्षु सतपुरुष के चरण का इच्छुक है, प्रांक 105 क्या हिडिंग लिखा है कृपाल देव ने, कि भगवान महावीर के उपदेश का पात्र कौन? भगवान महावीर के उपदेश का पात्र अर्थात क्या, कि सम्यक दर्शन का पात्र कौन, ऐसा लिखा है तो उसमें पहला दस प्रश्न दिया है, तो दसों दस बोल दर्शन भाव को बंद करने के लिए होता है। दस में भी सबसे उत्कृष्ट कौन और सबसे सुगम कौन? सत्पुरुष के चरण का इच्छुक। सत्पुरुष के चरण का इच्छुक कौन होता है? कि जिसको सत्पुरुष की महिमा आती है वही उसके चरण में जाने का इच्छुक होता है, जिसको सत्पुरुष की महिमा नहीं है तो सत्पुरुष के चरण में जाने की इच्छा नहीं रखता है। तो ये पात्रता का बहुत बड़ा सिम्टम है, चिन्ह है, लक्षण है कि यहाँ से दर्शन नहीं होता है।
महिमा कैसे करना,
पहचान करने से बाहर का है। अगर हमारे घर में हीरा पड़ा हो, हमारे बुजुर्ग ने खरीदा हो, लेकिन हमको पता नहीं हो तो हम बच्चे को खेलने के लिए दे देंगे, बिना पहचान महिमा सही रूप से आती कोक संज्ञा से आती है, लेकिन कोक संज्ञा से जो फल आना चाहिए उतने हद तक नहीं आते। पहले पहचान नहीं और कोक संज्ञा से अपने गुरुदेव की महिमा किया तो दर्शन मंद होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कोक संज्ञा का हम नाश करके सही पहचान नहीं करेंगे तो ये दर्शन मोह फिर बढ़ जाएगा। क्या होगा, आज हम मानेंगे कल इसकी बात नहीं मानेंगे, ये बात हो जाएगी हमारे, आज तो मानते हैं लेकिन कब उसकी नहीं मानेंगे ना करने के इसका कोई भरोसा नहीं है, ये परिस्थिति पैदा हो जाती है।
ऐसा भी होता है कि अभी तो बाढ़ के हिसाब से तो मानते हैं लेकिन अंदर में अभी भी नहीं मानते, ऐसा भी होता है।
वो कैसे पता है?
बाहर से तो गुरुदेव की वाह करे लेकिन अभी भी अभिप्राय में अंतर हो गए उनके साथ।
हाँ, तो बात खत्म होगी, इतनी महिमा आगे आई गई तो सही कहते हैं, तो संज्ञा में भी उतना तो आना चाहिए, तो वो कहते हैं वो सही है, वे ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूँ इसलिए इनकी बात सही है। अब मुझे नहीं समझ में आते तो मुझे समझने का प्रयत्न करना ही मेरा धर्म है, इस तरह से सरलता से करना चाहिए।
उनकी बात से अलग अपने को करना तो नहीं होता
है,
उनकी बात में फेरफार करने का तो नहीं होता,
वो प्रश्न ही नहीं होता, ये बात तो प्रत्येक प्रश्न में आता ही नहीं। अब क्या है, कौन इधर तो ये अपना प्रश्न चलता है, वो ऐसा है कि अज्ञान दशा में कौन निर्णय करता है कि जिसका दर्शन मोह मंद होता है ऐसा मुमुक्षु जीव ज्ञान दशा में निर्णय करता है, ऐसी बात। अब किसका निर्णय करता है कि मैं त्रिकाली शुद्ध सुख शांति से भरा हुआ पदार्थ हूं, ऐसा निर्णय करता है, और का निर्णय करता है सुख शांति से कहो, ज्ञानादि स्वभाव से परिपूर्ण भरा हुआ है, वो ऐसे ऐसे अनंत गुण से भरा हुआ है, ऐसा निर्णय कौन करता है कि जिसका दर्शन वो मंद होता है वही स्वरूप का निर्णय करता है, उसको ही बार बार नहीं होता है। मैं दर्शन मोह से जिसका ज्ञान दर्पण मलिन हो उसमें अपना स्वभाव का प्रतिबिंब स्वर्गीय का नहीं आता। क्या प्रकरण चल रहा है इस मेल करेंगे कि ज्ञान क्रिया में ज्ञान स्वभाव है, बात चली ना अभी, ज्ञान क्रिया में ज्ञान स्वभाव है। अब जो ज्ञान क्रिया में ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान क्रिया में अपने में अपना स्वभाव क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं जानने में आता, क्यों प्रतिभाषित नहीं होता? कि ज्ञान क्रिया एक दर्पण जैसी चीज है, जिस दर्पण पर इतनी मिट्टी लग गई हो तो उसमें कोई प्रतिबिंब पड़ता नहीं, तो उसमें कुछ निर्मलता होना आवश्यक है। वो निर्मलता कैसे होती है कि दर्शन के अनुभाग घट जाने से, दर्शन का यदि अनुभाग नहीं घटा तो ज्ञान मलिन रहेगा। बुद्धि कितनी भी विशाल हो सकती है, 11-9 पूर्व पढ़ सकते हैं, शास्त्र कंठस्थ हो सकता है, लेकिन दर्शनों से जो मलिनता है तो अपने स्वरूप को पहचान कर देगी। इसलिए अभी अपना शुद्ध स्वरूप का निर्णय किया, त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का निर्णय किया तो वो क्या है, ये जो त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है वो प्रधान का विषय है, और श्रद्धा जिस शुद्ध स्वरूप का श्रद्धा करती है वो आत्मा पर्याय रहित है। कैसा है? पर्याय रहित है। पर्याय वाला आत्मा की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को होती नहीं, तो पर्याय जिसमें नहीं है ऐसा आत्मा की श्रद्धा होती, तो पर्याय का ज्ञान कैसे होगा? तो पर्याय का ज्ञान ऐसा होगा कि ये मेरा त्रिकाली शुद्ध स्वरूप से स्वतंत्र है, वो कार्य रूप है। क्या कैसे है वो? कार्य रूप है, तो कार्य तो कारक के बिना होता नहीं, कार्य जो है वो कारक के बिना तो होता नहीं, करने वाला कोई होता है। तो कह दिया सत्ता ने, क्या बोल दिया सत्ता को? बात कर दिया सत्ता ने, ऐसा बोला कि ये पर्याय का कार्य इच्छाओं का को पर्याय का पर्याय करती है, मैं तो त्रिकाल अपरिणामी ध्रुव रहता, ऐसी सत्ता को बात कर दी। इस सत्ता ने सही बात लिखी है, प्रेम दृष्टि में से लिखी हुई बात है कि पर्याय स्वतंत्र है, उसके शक कारक भी स्वतंत्र है, ये द्रव दृष्टि में से लिखी हुई बात है। चूंकि पर्याय का एकत्व ही मिथ्यात्व है, तो जहां पर्याय का कर्तापणा है वहां व्याप व्यापक भाव से एकत्व आ जाता है, हो ही जाता है। कर्तापणा भिन्नता में नहीं होता, एकत्व में करता पड़ा रहता है। पर्याय का एकत्व तो अनाधिकार मिथ्यात्व है, उसको छुड़ाने के लिए भी पर्याय का करता पड़ा नहीं होना चाहिए अभिप्राय में या समझ में, ये दूसरा न्याय निकलता है। तीसरा न्याय वो निकलता है संसार का, कि अनादि से पर्याय में संसार है और त्रिकाली शुद्ध आत्मा में सार नहीं है। तो पर्याय में संसार है, ये यही सूचित करता है कि त्रिकाली से वो स्वतंत्र चलती है, इसके बंधन में रहती तो ऐसी नहीं होती, कभी नहीं होती। लड़का स्वतंत्र हो जाता है, पिताजी का नहीं मानता है तो क्या होता है? क्योंकि इसका नफा नुकसान नहीं हो जाता है, स्वतंत्र हो गया है। क्या बोले? वो स्वतंत्र हो गया है, चाहे अच्छा करे तो उनका, बुरा करे तो उनका। का मेरा कोई भाग हिस्सा है, कोई समझ नहीं मेरा ऐसे पर्याय में नुकसान का जिससे संसार का दुख है और दृढ़ स्वभाव में दुख की गंध भी नहीं। निर्णय पर्याय ये दारी पर्याय का दारी का नहीं, ऐसी वस्तु विचित्र है। पहले बोला कि थोड़ी वस्तु विचित्र है। देखिए श्रद्धा गुण का ऐसा स्वभाव है, कैसा तो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करे। मुझे थम मसी दो खला समा दिखती है वही जीवो, क्या बोला उदासी का आश्रय करने वाला सुनी दृष्टि है। अगर व्यवहार तो है मुझे तो मेरे निश्चय तो व्यवहार तो क्या व्यवहार होगा, व्यवहार है लेकिन एक उदास है संतान के विषय में व्यवहार तो श्रद्धा भी जीव का गुण और ज्ञान भी जीव का गुण, लेकिन वो अपना अपना कार्य करता है। न श्रद्धा ज्ञान का काम करे न ज्ञान श्रद्धा का काम करे, ऐसी वस्तु विचित्र है। इसलिए तो लोग में उलझन हो जाती है कि बात कैसी अटपटी हो रही है, लेकिन बात थोड़ी अटपटी होने पर भी जैसा स्वरूप है ऐसा ही जानना बात। इसलिए पल्ले नहीं पड़ती, बहुतों को पल्ले नहीं पड़ती कि इसका कारण क्या है, इसमें विचित्रता बहुत है। समझना बहुत सी बात कि वस्तु कभी मेचक दिखती है कभी अमेचक दिखती है। एक ओर से दिखते देखते हैं तो उसमें संसार और मलिनता दिखती है देखते हैं, एक ओर से देखते हो तो प्रकाश सुख देखते हैं, एक वर्ष देखते तो उसमें पर्याय की विचलितता देखते हैं, एक वर्ष देखते तो वस्तु दूर देखते हैं। नित्य भी है नित्य भी है, परस्पर विरुद्ध है फिर भी एक सत्ता में है, इसलिए बात थोड़ी विचित्र लगती है फिर भी है जैसी है ऐसी समझ करके उसका स्वीकार करना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कोई आदमी की प्रकृति ऐसी होगी, बहुत गर्म प्रकृति होती है तो भी क्या कहते हैं प्रकृति गर्म है लेकिन आदमी बोला है पेट में पाप, क्या कहते हैं और कोई शांत रहता है गर्मी नहीं हो गई लेकिन पेट में ऐसा है
इससे दूर रहता
इसका पेट का पता नहीं चलता है, मर के मर जा रहा है, इसके साथ काम नहीं करना है, अपने को इसके साथ काम नहीं करना, ऐसा करेंगे क्या?
ऐसे नहीं है, रूमर होता है।
बात तो ऐसी है कि विचित्र है, फिर भी जैसी है वैसी समझनी पड़ेगी, जैसी है वैसी नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पर्याय स्वतंत्र है, इसके सत्कार उसमें है। मैं तो त्रिकाल शुद्ध सुख शांति से भरा हुआ हूँ, निष्क्रिय हूँ, बंद और बंद का कारण मोक्ष और मोक्षा कारण इसमें नहीं है। ऐसी अज्ञान दशा में स्वरूप का निर्णय दर्शन रूप की मंदता में होता है। कितना विस्तार है ये प्रश्न का, कितना विस्तार
सत्संग का जो अभाव
किसका प्रश्न है?
अच्छा सत्संग का जो अभाव है वो तो निमित्त की अपेक्षा से बात कही
नहीं, भाव दर्शनों की बात की,
भाव दर्शन की बात कर रहे हैं। मैं पूछ चुका हूँ इस तरह
भाव मैंने क्या दर्शनों का भाव की बात चल रही है, प्रकृति की नहीं तो प्रकृति की बात नहीं चल रही है, क्या प्रकृति की बात ऑटोमेटिक होता है फिर भाव में अनुभव कट गया तो उपादान को नहीं समझे उसके लिए निमित्त की बात करनी पड़ती है, भाव को नहीं समझे उसको दृढ़ से समझाना पड़ता है। जैसे कोई पाप कर लेता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको अपने पाप की गंभीरता समझने नहीं आती तो क्या कहता है, कह रहे तो नरक भी तो चला जाएगा, उसको ग्रह करूंगी नौ कर्मों में तो बताना पड़ता है, ग्रह कर्म को नहीं समझता है तो उसको ग्रह कर्म का फल जो नौ कर्म है उससे बताना पड़ता है, तेरा नरक भी रूप में जाना हो जाएगा, मैं ऐसा पाप मत कर दू ऐसा कहते हैं, वो भाव पाप को नहीं समझे उसको ग्रह से समझाना पड़ता है, जिसको भाव समझ में आने उसको ग्रह से क्या बात है। हम स्वर्ग में आए हैं पर्याय की स्वतंत्रता में, पर्याय बुद्धि छुड़ाने का मुख्य अभिप्राय है, क्योंकि हमारे से पर्याय मुद्दा पर समझा इस स्थिति चालू में संसारी की मिथ्या मूल मिथ्या क्या पर्याय बुद्धि यही मिथ्या है, यहाँ से फिर सब जितने भी विभाव है वो विभाव का जो पनपना है वो फलता है पर्याय बुद्धि, दृढ़ दृष्टि भी निर्मलता बढ़ती जाएगी पूर्ण निर्मलता